अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषये नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न विवामि त्वया विना इति विज्ञेयाधे तं न मां शरणन्तिके। अङ्गश्यामलिं शतावीरवितुं मन्दे कृतं देवरं जडं जागृदरोति संविदधतं पट्टं रहस्यस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्नामाभिरामोदरम् राधा स्कंद निवेशितो जल्पना। गुरु गौरांग की कृपा से आज छठा दिन भी हम लोगों का निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। आज हमारी यात्रा धीर समीर रासस्थली बंसीवर गोपीश्वर महादेव और गोमा किला में श्री राधा गोविंद देव का दर्शन करके अभी लौटे हैं। वहां पर सबके संबंध में कुछ कथाएं जरूर हुई होंगी। अभी के बोले छिलो रे के बोले छिलो ऊपर तुम्हें बोले छिलो माधव तुम्हें बोले छिले तुम्हें बोले तुम बोला बोलो तो धीर समीर
So today we visited Dheera Samir. So Dheera Samir is a very wonderful place, and Shri Jayadeva Goswami has described in his Gita Govinda, Dheera Samir Yamuna Dheera Vasati Vane Vanamani Gopi Pina Payodara Maradana Chancha Karika Shadi. That one time Shri Krishna was eagerly waiting for Srimati Radhika, and he had set up a very beautiful puja. He had decorated it with bed of flower petals, and he was eagerly awaiting Srimati Radhika. And every time any leaf will drop in the puja, then even the sound of that leaf will feel that Radhika is coming, and he would immediately rush out of the puja to see if Radhika has come. And then when he doesn't see Radhika, he comes dejected back into the puja and is eagerly awaiting Srimati Radhika. So that time one sakhi of Radhika actually has decorated Radhika and is telling her that quickly to Abhisar, quickly go and meet Krishna because he is waiting for you in the puja. So this particular pastime took place in Dheera Samir. So there, seeing the Radha Krishna's sweet pastimes, seeing Radha Krishna's divine amorous force, even the wind, even the breeze becomes intoxicated. And since the breeze has been intoxicated, it can move very fast. So it slows down. So the place is called Dhira Samir. Another, there is a samadhi of Bhagavadas Pandit there. Sri Bhagavadas Pandit was Priyadam Sakha of Sri Krishna. And he is actually Subal Sakha. He is the manifestation of Subal Sakha. Subal Sakha, as we know, is very intimate. He looks exactly like Srimati Radhika. If Subal Sakha is dressed like Radhika, then if he is dressed in a female dress, then no one can understand whether he is Radhika or Subal. So he is so much alike Radhika. And he is very close, reaching up to the state of Prema called Mahabhava. So Sri Krishna, he always accompanies Sri Krishna in many sweet pastimes with Radhika. So Sri Gaurdas Pandit, he was actually brother of Srinivas Sankhila, the father-in-law of Nityananda Prabhu, and he lived in Ambika Kanma. So there we heard from Srimad Asananda Prabhu that how Sri Gaurdas Pandit insisted Sri Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu to stay at his home. So Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu offered him their wooden deities, but he wanted Mahaprabhu to stay, so the deity started to walk away. Finally, Mahaprabhu in his original form stayed there in Ambika Kalma. Even today, we can see how Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu look exactly by visiting his abode in Ambika Kalma. Also, Mahaprabhu gave him his oar for boating. So, this oar signifies that he has given the oar of holy name and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. By using this oar of holy name, we can cross across the ocean of repeated birth and death. Another wonderful pastime that took place in Dhira Samir explains that Guru is eternal, his body is eternal, Guru is completely Sachidananda. To think that Guru is ordinary human being is a big offense. Archa Vishnu Shinare Guru Shadharmati, Vaishnava Jati Buddhi. So to think that Guru is ordinary human being, this is a hellish mentality. So, one time, Sri Vakreshwar Pandit's disciple is Gopal Guru Goswami. And then Gopal Guru Goswami was in charge of Radhakanta Mutt. Within Radhakanta Mutt comes Gambhira, where Mahaprabhu spent 24 years. So, in his sannyas life, Mahaprabhu spent in Gambhira 24 years. And he used to be always absorbed in the mood of Sri Yogi Radha. One time, the government of Utkal, Odisha, became against the Radhakanta Mutt, and they wanted to take away all the property from Dhyanchandra Goswami, and it caused a lot of disturbance. So Dhyanchandra Goswami, he actually was very worried that how to stop the disturbance caused by the government. One person from Braj came and reported that, "I saw your guru, Gopal Guru Goswami, doing bhajan at Dhira Samir." So he immediately walked all the way from Odisha to Braj, and there he saw his guru there chanting Hare Krishna Mahamantra and deeply absorbed in Radha Krishna Bhajan. So he told his Gurudev that, "See Gurudev, you have appointed me as your successor, but yes, the government is causing disturbance. So please, you come personally and convince the government." So that time Gopal Guru Goswami told that, "Don't worry, you should return to Jagannath Puri and you find a neem tree. From that neem tree you make my deity and install that deity in the mud. As soon as you start the worship of the deity, then all the disturbance will melt away." And that's what he did. He went back and he installed the deity of Sri Gopal Guru Goswami, and all the disturbances went away. So this particular place, Dhira Samir. Yes. So even today, Srimad Madhava Maharaj has added that Sri Gopal Guru Goswami's deity is even today in Radhakanta Mutt. And there, the bhog is offered to Krishna and then to the deity of Gopal Guru Goswami. And then that, yeah, actually this is another wonderful thing that the bhog is offered to Gopal Guru Goswami. Gopal Guru Goswami will personally take it and offer it to Krishna. This is what goes on in even Udupi, where Madhvacharya, they don't make an offering. So it's a very important thing that Guru never disappears. He only is not seen by our vision, but is always present in manifest or in manifest form. His presence is eternal.
परम्परागत महाराज वंशी भट्ट संबंधे कुछ बंगला ते बोलो
আনন্দময় ধামের মধ্যে
আনন্দের অংশীদার হওয়ার জন্য তিনি সব দিকে তিনি আহ্বান করছেন। সুতরাং সেই আহ্বানে আমরা সারা দিয়ে বৈষ্ণব করে আনন্দে যদি আমরা এই ধাম দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করি তাহলে আমাদের এই জীবন সার্থক হবে। সুতরাং সবচেয়ে হচ্ছে বড় কথা আনুগত্য। গুরু মহারাজ আমাদের বলতেন যে আনুগত্য বিহীন যারা তাদের ভজন সাধন কখনো হতে পারে না। সুতরাং এই বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে তারাই আমাদের ভজন সাধন সিদ্ধ হবে, নতুবা নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় নায়মাত্র প্রয়োজনে নরক। নিজের চেষ্টার দ্বারা পাণ্ডিত্যের দ্বারা এগুলো এই ধামের স্বরূপ কিছু বোঝা যাবে না, ভক্তি তো পরে দূরের কথা। সুতরাং আমরা সবচেয়ে বড় জিনিস আনুগত্য এবং বৈষ্ণব করে তাহলে আর একটা বাদ পড়ে না আমাদের যে আমরা পরম বৈষ্ণবের সঙ্গে লাভ করে সৌভাগ্য লাভ করছি। এটা কিন্তু মনে করা যাবে না যে আমরা এই জন্যে আমরা ইচ্ছে করে বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করছি সেই উচ্চকুটি বৈষ্ণব সঙ্গ। এটা হয় না যে বহুজন্মের যাদের সুকৃতি পুঞ্জীভূত থাকে তারা এই উচ্চকুটি বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করে সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সৎ সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা ভজন সাধনের অধিকারী হতে পারেন। সুতরাং এদিক দিয়ে দেখলে বিচার করলে গুরু মহারাজ বলতেন এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে আমরা পরম সৌভাগ্যবান। পূর্ব পূর্ব জন্মে আমাদের প্রচুর পরিমাণে সুকৃতি ছিল যার জন্য আমরা উচ্চ কোটি বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করে হরিভজন করার একটা সুযোগ লাভ করেছি। তবে এই আনুগত্যটা যদি আমরা ছাড়িয়ে হারিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং আমরা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে হরিকথা শ্রবণ করব এবং বংশীবর এবং ধীর সমীরের আমরা কথা কিছু শ্রবণ করলাম, আরো বৈষ্ণবদের শ্রীমুখ থেকে অনেক হরিকথা শ্রবণ করে আমাদের জীবন সার্থক করবো। বাঞ্ছা গর্বদের কৃপা
পদ্মনাম মহারাজ এবাউট গোপীশ্বর মহাদেব।
ॐ ज्ञानतिरन्तस्य ज्ञानमञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So today we went to, under the guidance of our beloved Srila Gurudev, we went to Vam Shivat, which we just heard Shripada Padmaraja Maharaj describe. Nearby to Vam Shivat, which is considered to be the Rasa Stali, the place where Sri Krishna performed Rasa Lila with his beloved Braj Gopis. So nearby to there is the place of Gopishwar Mahadev. We visited that temple just prior to going to Vam Shivat. So it is described that Lord Shiva, but the original form of Lord Shiva, who is called Sadashiv, he is a transcendental manifestation of Sri Krishna in the transcendental spiritual world, Goloka Vrindavan. And he is actually Vishnu Tattva. So Lord Shiva and Parvati within this world are expansions of that original Sadashiv. And Lord Shiva himself is an eternal devotee of Sri Krishna. And he is always continually meditating upon the pastimes of Sri Krishna in the form of his Ashtakali Lila, his eight different time periods of the day, 24 hours of the day. So Lord Shiva is very attracted to Sri Krishna Lila and is completely absorbed in him. So when Sri Krishna was performing this Lila of attracting the gopis by playing his flute at Vam Shivat, and all the gopis came there, and Krishna was going to dance Ras. So Lord Shiva Mahadev, he wanted to also come and witness that. So therefore he came nearby to that place. But when he came there, there were various attendant gopis who were guarding the area of the Ras Mandala. And they told him, "No, no, you cannot enter here, because you are in male form. There is only one male in this Rasa Lila, and that is Sri Krishna himself. So only other persons that can enter here are gopis, female forms, who are eternal devotees of Krishna. So then Lord Shiva, he said, well, how then may I be able to enter Ras? And then they told him, if you worship Purnamasi Yogamaya Devi, then you may be benedicted to be able to witness this Ras Lila. So then, Lord Shiva, he went to the banks of the Brahmakunda. We also went to Brahmakund today. And at that place, Lord Shiva began to pray to Purnamasi Yogamaya. And then Purnamasi Devi, who arranges all the leelas of Krishna, she is the internal potency of Krishna for arranging all of his pastimes in Braj. So now she came there and she asked Mahadev Shiv, what is your desire? And he said, oh, I want to be able to witness this Ras Leela, this most transcendental manifestation, which is the topmost manifestation of Sri Krishna's leelas. So then she told him, oh, you cannot witness in this form. Therefore, I'm going to give you a gopi form. And at that time, she took Lord Shiva and she submerged him in the waters of Brahmakund. When Lord Shiva came out of the waters, he had a very beautiful, divine, transcendental cowherd girl form of a gopi. And now, very happily, Lord Shiva proceeded to go where the Ras Mangala was. Yogamaya Devi gave him a very hidden place nearby to where the Ras Leela was taking place, in a very secret kunja. So now, there, Lord Shiva was situated and he was watching the rasa dance as it was going on, the beautiful singing and dancing of all the gopis and Sri Krishna. But at that time, the gopis, they began to feel that there was something not up to the highest standard of tasting ras. So they thought, oh, there must be some kind of outsider nearby. And then they searched in that nearby kund, and there they saw this beautiful young gopi, which they had never seen before. So they approached her with a group of gopis, they surrounded her, and they said, oh, who are you? What is your name? But Lord Shiva had not been given any of the transcendental items of the spiritual body, which are describing name, the form, dress, etc. He had not been told these things by Yogamaya Purnamasi. So when they asked him these questions, who are you? What is your name? What is your husband's name? Where is the village that you live? Who is your father-in-law? And then he simply, in the form of a beautiful gopi, simply smiled and looked here and there. Now the gopis became very concerned. And because sometimes demons and asuras, they take different forms and shapes and try to enter into Krishna's pastimes to disturb. So now they caught this gopi and they did gulcha, punching the cheeks of this gopi. And now the gopi's cheeks were becoming so reddish. And the gopi was crying out for Yogamaya Purnamasi. And Yogamaya Purnamasi now became, her heart melted for Lord Shiva, and she came there. And she told all the other gopis, oh, actually I have given this benediction. This is Lord Shiva Mahadev. I have given him this benediction in the body of a gopi that he may be able to witness the Ras Leela. So you kindly give him your mercy. So then, all the gopis agreed, and Lord Shiva was situated in the northeast corner of the entire Rasa Mandala, where he is situated to this very day. And there, he is guarding the entrance to the Ras Leela. So therefore, if someone desires to enter into the Ras Leela of Radha and Krishna and their eternal associates, there is only one way, and that is through the mercy of Lord Shiva. He has been given that position to protect the Rasa Mandala. So therefore, our acharyas like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Ranganath Das Goswami, they have indicated that the gopis, they used to also worship Lord Shiva to attain the association of Krishna in the Ras Leela. And Vishwanath Chakravarti Thakur has written the pranam mantra, Vrindavanavanipate jaya soma soma mole, sanaka sanandana sanatana nara dendya, Gopishvara Vraja Vilasa Yugantri Padme Prema Prayachanirupadi Namo Namaste. Here, Lord Shiva is called Gopishwar, Gopishwar Mahadev. And what this means is that the gopis are the Ishwara of Lord Shiva, and he is serving the gopis of Krishna in this Ras Lila. So he is the protector of Braja Vrindavan, and without him, no one can attain this prema for Krishna, prema prayacha nirupadi. So he is the giver of divine Krishna prema. Therefore, we always worship Lord Shiva Mahadev. Srila Gurudev has also installed a very beautiful murti in Sri Rupsanatha Gaudiamath of Gopishwar Mahadev. So therefore, we are all following in the footsteps of our Rupanuga Sampradaya and worshipping this form of Lord Shiva Gopishwar Mahadev. Vamsa Kalpatrila Shri Krishna.
गोविंद देव के संबंध में कुछ बोलो हिंदी में. बोल सकता है तो भी बोलो. इतना दिन रात लिखता है पढ़ता है बोल नहीं सकता.
सनातन गोस्वामी Goswami, Bhagavan Bhattacharya Goswami, इन सभी ने विचार कर चार तीन जो काम वहां पर दिया था कुछ ना कुछ दिया है। इसके परवर्ती काल में श्री भक्तिवत ठाकुर ने भी यह काम किया, इसको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। मात्र आदेश प्राप्त करके रघुपुर गोस्वामी पर ब्रज में घूमते हुए परिक्रमा करते देखते हैं कि देखा कि एक गैया आई आकर के किला के ऊपर चली गई, उनके स्पर्श से अपने आप दूध चुचुआने लगी। दूध चुचुआने के बाद जब बंद हो गया गैया चली गई। ऐसे दो तीन दिन देखा और ढूंढ रहे हैं तो देखा ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने पूछा, बाबा तुम्हें कुछ उद्विग्न सा दिख रहा है, क्या बात है? तो बता कि गोविंद पर ढूंढ रहा हूं। तो देखो पास में जो गोमा किला है, दो बार किसमें गैया आती है उसमें दूध दे के अपने आप चली जाती है, तुम उधर जाके देखो। सचमुच देखा, फिर जब गए देखा एक क्षेत्र में दूध चला जाता है। प्रतिवासी को लेकर के स्थान पर थोड़ा हनन किया तो उन्हें गोविंद देव प्रकाशित हुए। ब्राह्मण थे कौन? वो ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं गोविंद देव ही ब्राह्मण के बीच में आकर के उन्हें निर्देश किया, गोविंद देव को प्रकाश किया, करने को पारा उनका वहीं पर सेवा पूजा शुरू कर दिया। तो कैया कुत्ते के कारण गो गो माता और जिस किला के उधर प्रकाश किया था उनका किला, इसलिए गोमा किला। यहाँ पर वर्तमान समय में गोविंद जी का मंदिर है, उस समय किला के रूप में था, उसका नाम था गोमा किला। ऐसे करके रूप समय पर गोविंद देव को प्रकाश किया। और गोविंद देव के बारे में रूप समय लिखा, जो भी कोई भजन करना चाहते, जो भी अपने परिवार के साथ संबंध रखना चाहते हैं तो कोई गोविंद देव का दर्शन ना करें। बंधु संगे यदि तब अन्न परिहास, थाके अभिलाष थाके अभिलाष, तबे मोर कथा लेखो, जेओ ना को कैसी मथुरा ते कैसी तीर्थ घाटे रस गास। यदि अपने परिवार जनों से परिवारीय जनों से संबंध रखना चाहता है तो कोई गोविंद देव का के सिंहासन के दर्शन ना करें। क्यों? तथा आचन हरि गोविंद विग्रह धरि, उधर गोविंद जी है त्रिभुवन रूप में खड़े हैं, उनके हाथ में मुरली है और मुख पर बंद मुस्कान है। जो एक बार देखेगा उनका सर्वनाश हो जाएगा, घर भर छूट जाएगा। असल में गुरु से बात कहना चाहते हैं, हे जीवो, अगर अपने जीवन सफल करना चाहते हो तो किसी घाट के पास जा करके जरूर गोविंद देव का दर्शन करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। रूप से बात गोविंद देव के सेवा प्रकाश के उपरांत बहुत कुछ काम किया ब्रज में रह करके। उनका सबसे प्रधान कृति उच्च नीलमणि, भक्ति समेत सिंधु, ललित माधव, वितर्क माधव, बहुत कुछ ग्रंथ है। उनमें से भक्ति सिंधु में भक्ति के जितने भी डेफिनेशन हो सकता है भक्ति राज्य में, समस्त डेफिनेशन भक्ति स्वामी सिंधु में है। गुरुदेव बताते हैं ये संदाद्राव ग्रंथ, जो भी भक्ति राज्य में जो कुछ यदि सत्ता है, साधन भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, जितने प्रकार के डेफिनेशन है, ये सूचना ढूंढना चाहते हैं भक्ति स्वामी में जाइए। और अपना जो भाव है, जिस काम करने के लिए आए थे, जिसने कहा गया श्री चैतन्य मनो विष्णु स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदातेयम ददाति स पदान्तिकम्। तो महापुरुष किसने जगत में आए थे? राग प्रेम रस निर्यास कलित आसदन राग मार्ग भक्ति लोग के बोलते प्रचलन। जो कृष्ण की अंदर तीन इच्छा थी, प्रेम रस निर्यास, प्रेम रस निर्यास ही उनका तीन वांछा है राधा प्रणय महिमा। ये तो अपने आसदन के लिए और चाहते राग मार्ग भक्ति लोग के बोलते प्रचलन, राग मार्ग देने के लिए आए थे। कौन सा राग मार्ग? दास रस का, सुख रस का, वात्सल्य रस का, कौन सा? तब बताया रूप से पात्रे अमर पितो चली चिरा तन्मय वक्तिना करो समर्पय तुम उन्नत जल रसान सब कृष्ण। अमर पितो चली चिरा तो बहुत दिनों तक दान नहीं किया गया था। इससे पहले लक्ष्मण महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में बनाए थे, उसमें तो दान किया था, उसके बाद से बहुत दिनों तक दान नहीं किया गया था। समर्पय तुम और तुम ही समर्पय तुम सम्मान रूप में देने के लिए, भली भांति रूप में देने के लिए, कौन सा? उन्नत उज्जवल रसान,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति एक ऐसी सर्वतंत्र स्वतंत्र है कि महापापी व्यक्ति भी, दुर्जन व्यक्ति भी, यहां तक महाकामुक व्यक्ति भी, बिल्व मंगल जैसा कामुक व्यक्ति भी भक्ति जब आरंभ कर देता है तो भक्ति के प्रभाव से उसके काम इत्यादि जितने हैं सब दूर हो जाते हैं। भागवत का श्लोक उपस्थित करते हैं, पीक्रीडितम बजुबधुभि दंच विष्णु श्रद्धा श्रृणुयात अथ वर्णयेत जह भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम हृदय रोग मासु अपहृत चिरो निधेर। कर्म जो ज्ञान के साधक या अधिकारी काम आदि दोष रहने से, दुराचार के आ जाने से उनका सर्वनाश हो जाता है। कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, इसलिए सबसे पहले दूर करके ज्ञान योग का अनुष्ठान करने पर, शुद्ध होने पर उनको मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में काम इत्यादि हो, काम माने भोग की लालसा, स्त्री पुरुष संग की लालसा, और जितने पाप हैं, रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का अधिकारी है। प्राणी मात्र, जीव मात्र, विशेष करके मनुष्य भक्ति का अधिकारी हो, जिस अवस्था में हो, अजामिल जैसा पापी हो, जगाई मधाई जैसा पापी हो, अथवा और जितने पापी हैं, भक्ति के अंगों का पालन करते 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 हृदय में स्वतंत्र भक्ति देवी आविर्भूत हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, और शीघ्र ही समस्त दोषों को दूर कर देती है। श्रील ग्रंथकार महोदय शास्त्रों के प्रमाण से इसी तत्व का यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति के उदय में सबसे प्रथम अंग है श्रद्धा। दुचारी व्यक्ति भी रहेगा, पापी भी रहेगा, कामी भी व्यक्ति रहेगा, पहले श्रद्धा होगी। श्रद्धा माने क्या? महापुरुषों के वचनों में और शास्त्र के वचनों में उसको विश्वास होगा। पहले तो उसमें कृष्ण सेवा की वासना आएगी, कृष्ण की सेवा करूंगा, और उसका दो लक्षण ये महापुरुषों के मुख से में जो कुछ लीला कथाओं को सुनते हैं और शास्त्रों में जिनका वर्णन है उनमें उनको विश्वास हो जाता है। भगवान की समस्त लीलाएं रसमयी और लीलाओं का सार है रास लीला। उस दिव्यतम रास लीला के वर्णन के बाद में फलश्रुति में भागवत में ही कहा गया, विक्रीडितम बजुबधुभि दंच विष्णु श्रद्धान्वितोन शृणुयादथ वर्णयेद जह भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृदय रोगमासु अपहृत्य चिरेण धीरा। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान ब्रज गोपियों के साथ में जो लीला किए हैं बंसी भट में, आज जो हम यहाँ पर गए थे, उसको श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक पहले बतलाया शास्त्र और गुरु वैष्णवों के वचनों में श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक यदि सुने, श्रवण कीर्त और उसका वर्णन करें अथ वर्णयेत जह, तो उसको पराभक्ति हो जाती है। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति हो जाती है, और शीघ्र ही पहले भक्ति आती है और फिर हृदय का काम रोग है। हृदय रोग माने काम रोग, यह ऐसे तैसे नहीं जाता है, बिना भक्ति के आए नहीं जा सकता। सब जितने विकार हैं सब दूर हो जाते हैं। भक्ति परम भगवती प्रतिलब्ध, भगवान श्री कृष्ण में पराभक्ति लाभ कर, पहले भक्ति लाभ होगी और समाप्ति का क्रिया यहाँ पर कामम हृदय रोग मापी हई नोत्य चिरेण धीर। हृदय रोग मैने काम धीरे धीरे दूर हो जाए। धीरा, धीर माने धी माने बुद्धि, जो परम बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ऐसा विश्वास करते हैं पापी व्यक्ति भी अनाधिकारी व्यक्ति भी यदि श्रद्धा पूर्वक इसको श्रवण करता है तो भक्ति यहाँ पर पराभक्ति प्रेम भक्ति उत्पन्न होकर के उसकी सारी कामनाएं वासनाएं यहाँ तक की काम भी दूर हो जाता है। इसको जो विश्वास करते हैं वो तो धीर है और जो विश्वास नहीं करते वे मूर्ख है, अपराधी हैं बल्कि शास्त्रों के। इसलिए अत्र तु हृदरोगो पहनात् पूर्वमेव भक्ति प्राप्ति ही, यहां पर हृदरोग दूर होने के पहले ही भक्ति पराभक्ति हुई और पराभक्ति से हृदरोग इत्यादि सब दूर हो गए। हृदरोग माने काम, रहने की तो बात क्या रहे, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जो अनन्य रूप से भजन करता है उसको साधु ही समझना चाहिए। अपिचेत सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु रेव सम्मंतव्य सम्यक दर्शितो हि स। अपिचेत सु दुराचार अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी भोगी दुर्जन पापी व्यक्ति भी यदि भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भात माने कृष्ण ही हमारे आराध्य दूसरे नहीं, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कृष्ण को प्रसन्न करने अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं चाहता, ये है अनन्य भात। ऐसा व्यक्ति यदि हो महादुराचारी होने पर उसको साधु ही समझो, सम्यक दवस्तो ही सर। यदि कोई कहे ये जितने परिमाण में पाप करता है उतने परिमाण में वो पापी है और जितने परिमाण में वो अच्छा कर्म सत्कर्म करता है उतना वो साधु है, नहीं, संपूर्ण रूप में समझो। मंतव्य मेरा ऐसा आदेश है ऐसा समझो, वो पापी नहीं है बल्कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छ छांत निगच्छति कौन्ते प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो परम धर्मात्मा हो जाएगा। अजामिल ने अपने पुत्र के लिए नाम किया, अनजान में ही किया और क्या हो गया, क्षिप्रम भवति धर्म, भगवान के परिकरों का संग हुआ और वो सब जितना दुराचार सब छोड़ करके फिर हरिद्वार में जा करके भगवान का भजन करके चला गया वैकुंठ में। इसलिए उसको परम धर्मात्मा ही कहते साक्षात छांत निगच्छति कौन्ते प्रति जान ही न मे भक्त प्रणश्यति, हमारा भक्त कभी भी न प्रणश्यति, उसका विनाश नहीं होता। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो भक्त हो, हम प्रतिज्ञा करेंगे कहीं छूट जाएगा। अब कह रहे हैं भक्ति के संबंध में कहा गया भक्ति कैसी है, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांदानंद विशेषात्मा। ये भक्ति के छह क्रम विकास हैं। इसमें पढ़े कहते हैं कि क्लेशाग्नि यदि उत्तमा भक्ति अन्नाभिलाषिता शून्यम। यह भक्ति यदि आरंभ की जाए तो श्रद्धा जहां हुई तहां भक्ति की क्रिया आरंभ हो जाती है। जितने प्रकार के क्लेश हैं जगत में, वृद्ध होना, रोग होना, अस्वस्थ होना, पुनः पुनः जन्म मरण इत्यादि के जो केस हैं, ये सब दूर हो जाते हैं और सब प्रकार के शुभ उसके हृदय में उदित हो जाते हैं। उसी के संबंध में कह रहे हैं श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने साधन भक्ति को दो गुण बतलाए, सब क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है और शुभदा शुभ गुण जितने हैं भक्ति के उदित हो जाते हैं, चाहे वो वैधि भक्ति हो चाहे रागानुगा हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों में क्लेशग्नि और शुभदा ये दोनों गुण उदित हो जाते हैं। क्लेश क्या है और शुभदा किसको कहते हैं, इसका यहां पर निरूपण कर रहे हैं। पहले महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद के तृतीय सूत्र में लिखा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या माने क्या, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना और अनित्य वस्तुओं में अनात्म वस्तुओं में आत्मवृद्धि होना, अर्थात देह, गेह, स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव आदि नश्वर वस्तु ते को नित्य समझना, स्त्री, पुरुष, वैभव, धन संपत्ति यह नित्य है, इसी से हम सुखी लाभ होंगे, यह बात ठीक नहीं। रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, मल, मूत्र इत्यादि से पूर्ण अपवित्र शरीर, यदि कहीं पर हम मैला देखते हैं तो स्पर्श हो जाए, मैला मैंने टट्टी, तो फिर स्नान करके पवित्र, अरे मैला जो तुम्हारे हृदय में है, पैखाना भरा पड़ा हुआ, उसके लिए कितना बार स्नान करेगा, इसलिए अपवित्र को भी पवित्र समझते हैं। यहां पर राग, द्वेष, व्यभिचार सब भरा पड़ा है और स्नान करके पवित्र, उससे क्या होता है। और एक आदमी स्नान नहीं करता किंतु कोई भी उसमें दुर्गुण नहीं है, वही पवित्र है। विषय सुखों के परिणाम से भयावह जन्म, मरण आदि, नरक इत्यादि दुख होते हैं, यही सब दुख है, ये सब अविद्या के कार्य हैं। अस्मिता, मैं हूं, मैं शरीर हूं और मेरे ये संबंधी, ये मेरा पुत्र, स्त्री पुत्र, परिवार मेरा है, ये धन संपत्ति मेरे है, ये कुत्ते और गाय हमारे अपने हैं, ये अस्मिता। राग, सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति के उपायों को, कामना को राग कहते हैं। अथवा कोनो वस्तु हमें चाहिए, कुछ हम वस्तु चाहते हैं और नहीं मिले जो बाधा देगा उसके ऊपर में क्रोध होता है, इसको भी राग कहते हैं। द्वेष, सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति का नाम देश है। देश माने यदि हम कोई सुख प्राप्त करने जा रहे हैं आप बाधा दिया तो उसे हम द्वेष करते हैं। अनुकूल विषयों को प्राप्त कराने के आधार स्वरूप शरीर में आसक्त होना मृत्यु से भयभूत होना का नाम अभिनिवेश है। इस प्रकार के ये पंच अविद्या है और प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कूट और बीज, ये सब भी पाप हैं। इनके संबंध में हम कल बतलाएंगे। ये जितने हैं भक्ति के प्रारंभ करने में, साथ ही साथ में ये जितने दुर्गुण है दूर हो जाना आरंभ करते हैं। कैसा बतलाया? जैसे हम भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष्टैक काल प्रपद्यमानस्य उद्घासन, जितने हम खाते हैं प्रत्येक ग्रास, प्रत्येक ग्रास नहीं, जितना अन्न का दाना खाते हैं उतने में ही हमारी तुष्टि पुष्टि और खुदा निवृत्ति हो जाती है। साथ ही साथ में ऐसे ही भगवान की भक्ति, भगवान की अनुभूति और विषयों से वैराग्य एक साथ में होता है। तो ये भक्ति के गुण है, इसके संबंध में हम कल बतलाएंगे। आज यहीं तक। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां।
So we're continuing Sri Vishwanathacharya Thakur's Madhurya Kalampini. Here the author is describing Bhakti because she is independent, that she has the power to enter the hearts of even the most sinful or lusty or low class of persons. An example of a lusty person is Sri Bhimvamanga. An example of a sinful person is Ajamil. But as one begins the activities of devotion by the influence of Bhakti Devi, all faults are dispelled. This is declared boldly in the Srimad Bhagavatam, Prakriditam, Vajradvirtam, Chivishnu, Sharapata, Namashunaya, Tatamaryama, Bhakti Param, Bhagavati, Patilupta, Kama, Vidro, Achmurti, Acharitra, Dhira. That, and the discussion of that verse will be given later. But by the influence of Parabhakti, the disease of the heart called lust is dispelled. Therefore, we see that in the performance of the activities of karma or jnana or yoga, if there is some bad behavior or some fault, one cannot achieve perfection in that discipline and one is criticized everywhere. For example, if a karmi performs illicit activities, then he cannot become purified, he cannot achieve the goal of liberation. But the devotee, even if lusty desires and sinful activity are present in them, still all have the qualification to achieve ultimate success by performance of bhakti. Here we see all jivas in any condition of life all have the right to perform Hari Bhakti. The examples are given in Shastra, such as Jagai Mata and Ajamil. By performing activities of Bhakta of devotion, then Bhakti Devi manifested in their hearts by her own independent desire. There was Sri Vishwanathacharya Thakur says the first platform or stage of devotion is called Shraddha. Even though all faults may be present in a person, if they have Shraddha, then all faults will be dispelled by the influence of devotion. That Shraddha has two symptoms, or faith has two symptoms. First, that Shraddha will manifest as Krishna Sevavasana, a desire to serve Krishna. And those two symptoms will be unflinching faith in the words of Guru and Vaishnav, and in the statements of the scriptures. Thus, Even though all Sri Krishna's pastimes are not as confidential, the most confidential is Rasleela. And Rikrini, as stated at the end of Rasleela, Rikrini Nam Rajavadu Vecham to Vishnu. If someone hears with complete faith means faith in the words of Guru Vaishnava and faith in the words of Shastra. If he hears the pastimes that Bhagavan Sri Krishna performed with the gopis at Bansi Bhat, where we went today, then by hearing them with unflinching faith, then repeating the same, then Parabhakti or Premabhakti will enter the heart, and then Kamro or lust, the disease in the heart, will gradually be dispelled. Without Bhakti, how can lust be dispelled? It's impossible. Therefore, first Bhakti shall enter the heart, then all faults will be removed. Therefore, here the qualification of the hearer is given as Dhira. Dhira. Dhira means intelligence, determination. Dhira here means strong, unflinching faith that by hearing these pastimes I will achieve perfection. Therefore, who has this faith? That person is called Dhira. Faith means faith in the words of Guru and Shastra. And if a person thinks otherwise, then first Bhakti, first fault should be dispelled, then Bhakti will come. If a person thinks like that, they are foolish and an offender. Therefore, that regrowth, the disease of the heart, is called lust. Even if the worst person develops that Ananya Bhakti or one point of devotion, then Bhakti must come to them also. Sri Krishna describes in the Srimad Gita, Apichet Sriracharo Bhajadimam Ananyavat Saruveva Himantavya Samyakarasthitisa. Sri Krishna declares, even if the Sutracharo means the worst person, the biggest bogey, materialist enjoyer, or the worst sinful person, takes shelter of my Ananyavati, or my one point of devotion, then Krishna says, I declare him to be a sadhu. Then what is the qualification of someone who has an Anibhakti? Their symptom is that they always think Krishna is my worshipful deity, and apart from Krishna's seva, I have no other desires. A person who thinks like that, such a person is a sadhu. If someone thinks to that degree someone has bad qualities, then to that degree he is not a sadhu. Or concomitantly, to that degree that that person has good qualities, then to that degree he is a sadhu, that is completely wrong. Who is a sadhu is dependent upon their faith, and not by the absence or by the possession of good or bad qualities. Then Sri Krishna qualifies it in the next verse, Chitram Bhavati Dharamama. Such a sadhu, if he has one point of faith in me, even though he may be have very bad qualities, Chitram Bhavati Dharamama, very quickly he becomes a most pious and religious person. So many examples are given in scripture. Ajamil was addicted to women and illicit activity, but he chanted the name of his son Narayan by accident. What happened? That led him to Sadhu Sangha, and hearing the glories of the holy name, he renounced everything, went to Haridwar and became a religious personality. Therefore Krishna says, Nama Bhakti Pranashati, my devotee is never destroyed. Or Arjuna, you should declare this pretty boldly. Therefore there are, in Uttam Bhakti there are three gradations. First is Shraddha, then Bhava Bhakti, then Prem Bhakti. In the stage of Shraddha, the two symptoms are developing the devotee. Kleshadni, Subhada, Moksha, Sudurakrit, Sudurava, Sangramanda, Prishanatma, Sri Krishna, Kapsani, Chasa. Uttam, in the stage of Shraddha, two qualities will be seen in the devotee. The first is Kleshadni. All type of disturbance will be burned to ashes. And then, simultaneously, Subhada, all good qualities will manifest in that devotee. What does Kleshakni? There are many different types of disturbance. Old age, disease, poverty, the cycle of birth and death, These will all be destroyed in the first stage of bhakti called Shraddha. And Supadan means all auspiciousness and all good qualities will appear in the heart of that devotee. Whether the devotee is practicing Vaidhi Bhakti or Raghunuga Bhakti, in both forms of bhakti, these two qualities appear at the time of Shraddha. Patanjali has described in the Yoga Sutras five types of klesh or disturbance: avidya, asmita, rag, dvesh, avinivesh. What is avidya? Avidya means ignorance. That means to consider a temporary thing to be eternal, to consider a pure thing to be impure, to consider anatma to be atma, something which is not spiritual to be spiritual, to consider, that is called avidya. For example, to think my wife and children and wealth will make me happy, to use the body consisting of stool, urine, pus, blood and mucus to be me, that is called avidya. By touching stool, we have to take bath. Therefore, only by taking bath, one does not become pure. One becomes pure by possessing good qualities. Therefore, these are five levels of klesh. First is avidya, then asmita. Asmita means to think, I am mine. I am this body, and what is in relation to this body is mine. Rag means to desire material happiness and to avoid unhappiness. Dvesh means to be attached to happiness. Dvesh means to be attached to happiness or to try to detach yourself from unhappiness. That is dvesh. For example, someone does not fulfill my material desires, then I become envious of him. This is called dvesh. And lastly, abhinivesh. Abhinivesh means absorption in falsity, which manifests in fear of death. Example, if you're in this body, then you're afraid of death. These are five levels of klesh, and these are all destroyed in the first level of devotion called kleshagni. So, there are also four types of sin: parapta, aparapta, kut, and bij, but that will be discussed tomorrow. Then how we can understand we are making progression in bhakti? Srimad Bhagavatam has declared pareshana bhavarati. Just like each mouthful of food that I take, then to a concomitant degree, I will have tushti, pushti, and kut nivriti. Tushti means satisfaction, pushti means nourishment, kut nivriti means freedom from hunger. So that much I eat my kichari, that much these three things happen. Go, Pramana.